الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آج تھوڑا سا میرے انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم ہے، تو اگر آپ لوگوں کو آواز نہیں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی اور طریقے سے، ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے یا تو فون سے ہم کر لیں. امید ہے اس وقت تو صحیح آ رہی ہوگی نا. الحمدللہ، چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا ٹیسٹ نکال لیجیے آپ جو ہم لاسٹ ٹائم کر رہے تھے. جی، میں ابھی فون پہ نہیں ہوں، میرا تھوڑا انٹرنیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا. جی، میں فون پہ بھی کر لیتی ہوں آن، لیکن آپ لوگ اپنا ٹیسٹ انشاءاللہ نکال لیں. سب لوگ ٹیسٹ نکال لیجئے تاکہ ہم گو تھرو کر لیں اسے. میں چاہ رہی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جو بھی ٹیسٹ آئے آپ لوگ یہ غلطیاں نہیں دہرائیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ کو ٹیسٹ صحیح اٹیمپٹ کرنا آتا ہو. جی، میں فون پہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جاتی ہوں. ویسے فون کے پر اس وقت میں تو کوئی سوال نہیں پوچھوں گی، آپ لوگوں نے جو بھی جواب دینے یہیں پہ آپ لوگ دیجیے گا. آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ کو ہی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. جی، میں فون لائن میں نے لے لی ہے، آپ یہاں سے ڈراپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیر. جی، ٹیسٹ سب نے جس جس نے کھول لیا وہ ون ٹائپ کر دیں. جنہوں نے ٹیسٹ کھول لیا ون ٹائپ کیجیے. جی، یہاں پہ لنک دے دیں پلیز، جن کے پاس نہیں ہے وہ لنک سے کھول لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یا آپ لوگوں کے پاس جو ای میل آئی ہوئی ہیں آپ ان سے کھول لیجیے. جو ای میل آپ لوگوں کے پاس آئی ہے نا اسے آپ دیکھ لیں ٹیسٹ. ہم کہاں تک پہنچے تھے، کس کوشچن تک پہنچے تھے؟ میرے سامنے بھی جو ٹیسٹ ہے، جی جی میری بھی ای میل میں ٹیسٹ نہیں ہے، گریڈز ہیں آپ لوگوں کے. اچھا جی، اگر کوئی کوآرڈینیٹر مجھے اس وقت ای میل کرتے ہیں ٹیسٹ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سیونتھ کوشچن پہ پہنچے تھے. یہاں سے ذرا گریڈز کے ساتھ سے دیکھ کے پڑھنا بہت مشکل ہے، ٹیسٹ اٹ سیلف سامنے ہو وہ ذرا آسان ہے. آپ لوگوں کو پہلے دیکھیں جو چوائسیز ہوتی ہیں نا وہ دیکھنی ہوتی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے. سب کا کھل گیا ہے ٹیسٹ؟ جی، ابھی ان شاء اللہ اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جی، مجھے جو ہی ای میل میں ٹیسٹ آ جاتا ہے میں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں. جی، جزاک اللہ خیر کثیرا. جزاک اللہ خیر ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں جی، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. اچھا، ایک سوال تھا نا، ہم سکسٹھ پہ تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تھے اس وقت، اور اس کے بعد پھر ہم آگے. جزاک اللہ خیر. جی، آگے ہم دیکھ رہے تھے ایک بات جو میں نے آپ سے پوچھنی تھی، مقبول حدیث کا حکم کیا ہے؟ مقبول حدیث کا حکم کیا ہے؟ جی، ایکسیپٹڈ، یا پھر کیا اس کو دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، پھر ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ اس کو پہلے تحقیق کی جائے گی پھر ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ کیا پہلے تحقیق کی جائے گی پھر ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ یہ میرا کوشچن ہے آپ لوگوں سے. اٹس آلریڈی ایکسیپٹڈ، بالکل. اور حسن حدیث جو ہے وہ کس کی قسم ہے؟ حسن حدیث کس کی قسم ہے؟ मकबूल की, तो जाहिर है उसके ऊपर भी तो वही लागू होगा ना, वही चीज, वो उसी की टाइप है ना, तो उसके लिए वही रूल होगा जो मकबूल हदीस का रूल है। और मकबूल हदीस के अंडर जितनी भी आती है, हसन ली गैरी ही हो गई, हसन ली जाती ही हो गई, सही ली गैरी ही हो गई, जितनी भी आती है सबका सेम ही रूल होगा, क्योंकि आपको एक दफा बताया जा चुका है ना कि मकबूल हदीस का ये हुक्म है। ठीक है, अब है इनमें से कौन सी हदीस सबसे कवी है। नंबर वन हसन ली जाती ही, हसन ली गैरी ही, और सही ली गैरी ही। आपके पास ये तीन चॉइसेस हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने बाद वाली चीज को नहीं देखना, आपने देखना है जिसके साथ सही लग गया ना, वो ही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक या स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑथेंटिक तो सारी है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगी उसी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने हसन ली जाती ही हो या हसन ली गई ही हो, आपने जब देखा कि सही वाली कोई है, अगर सही ली जाती ही भी होती यहाँ पे ऑप्शन, फिर क्या होता जवाब, फिर क्या जवाब होता अगर सही ली जाती ही भी होती, सही ली जाती ही भी होती अगर, जी फिर सही ली जाती ही सही ली गैरी ही से ज्यादा ऑथेंटिक आई मीन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर सही ली जाती ही इसका आंसर हो, हाँ जी वो नंबर वन पे है बिल्कुल। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है मजहूल रावी वो है, मजहूल रावी वो है नंबर वन जिसका हाफजा कमजोर हो, जिसका हाल मालूम ही नहीं कि वो कौन था, और जिसकी अमानतदारी में शक हो। अब देखें आपके, हमने जब ज़ईफ हदीस में पढ़ा था मजहूल रावी के बारे में भी, मजहूल रावी जरूरी नहीं है कि उसका हाफजा किसी का कमजोर हो या किसी के, और बस अननोन जो है उसको मजहूल रावी कहेंगे। ठीक है, अननोन रावी को मजहूल कहेंगे, और यहां पे इसी वजह से जिसका हाल मालूम ही नहीं कि वो कौन है उसको अननोन कहा जाता है, तो नंबर टू करेक्ट हुआ ना। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब देखिए नंबर नाइन, हसन ली जाती ही वो हदीस है नंबर वन जो अकेली भी हो तो काबिल अमल है, नंबर टू जिसके रावी का हाफजा कमजोर है इसलिए उस पर अमल नहीं किया जा सकता, नंबर थ्री उस पर अमल तभी किया जाएगा जब कोई और रावी आकर उसकी तस्दीक करेगा। अब देखें आप, जब हमने अभी ये बात की है कि हसन किसकी किस्म है, चाहे लिजाती ही हो चाहे ली गैरी ही हो, किसकी किस्म बताएं, मकबूल की। ठीक है, इसमें तो किसी को शक नहीं है। जब मकबूल का एक हुक्म हमने पढ़ लिया है कि उसको वो काबिल अमल है, उससे दलील भी ली जाएगी, तो वो चाहे हसन ली जाती ही हो, हसन ली गैरी ही हो, सही ली जाती हो, सही ली गैरी हो, वो काबिल अमल है। अब ये नहीं है जिसके रावी का हाफजा कमजोर है, यहां तक तो ये बात सही थी, इसलिए उस पर अमल नहीं किया जा सकता, ये तो फिर मकबूल में आएगी ही नहीं। ये बात समझ आई, ये तो फिर मकबूल में आएगी ही नहीं। मकबूल की है ही बात कि वो कबूल है, वो एक्सेप्टेड है, तो इस पे अमल किया जाएगा, गो इसके रावी का हाफजा थोड़ा सा कमजोर एक रावी का हाफजा हो सकता है, इसी वजह से ये तो ये सही ली जाती ही नहीं बनी। ठीक है ना, ये बात सबको समझ आ गई। हाँ, इसका पहला पार्ट जो था ना वो दुरुस्त है कि जिसके रावी का हाफजा कमजोर है, लेकिन आगे भी तो देखें, जिनके वो ज़ईफ हदीस भी हो सकती है, नाकाबिले अमल भी हो सकती है, कईयों के हाफजे कमजोरी की वजह से उस हदीस को ज़ईफ कह दिया गया ना, लेकिन यहां पे जब आगे आ गया इसलिए उस पर अमल नहीं किया जा सकता। तो जब मैंने आपको ये बताई थी, अगर आप अपने नोट्स चेक करें तो मैंने आपको ये लिखवाया था कि हसन ली जाती ही अकेली भी काबिल अमल है, क्योंकि हसन है ना, ये हसन है, ज़ईफ नहीं है, ये हसन है। तो अगर आप ये याद रखते ना कि मकबूल हदीस की ही तो ये किस्म है, तो वाय देन के नाकाबिल अमल है, फिर तो नाकाबिल अमल तो वो है जो ज़ईफ हदीस है, अगर ये ज़ईफ हदीस होती तो फिर ये मकबूल की किस्म ना बनती, तो मकबूल की किस्म बनी है, इसका मतलब है कि इसको काबिल अमल समझा जाएगा। ये बात अब समझ आ गई है, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप लोगों ने बस ये देखा कि उसका हाफजा कमजोर है, आगे इसको छोड़ दिया। हसन ली गई रही भी इसी तरह काबिल अमल है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि जो रावी का हाफजा जो कमजोर था तो और रावियों की ने आके इसको सपोर्ट कर दिया और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हम हसन, हसन जो वर्ड है ना वो ही बता रहा है। जब आपने हसन वर्ड देख लिया ना या सही वर्ड देख लिया तो वो आपको बताता है कि ये हदीस काबिले अमल है, इससे दलील भी ली जाएगी नो मैटर व्हाट। सही है, ये बात सही है, समझ आ गई, ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी आगे देखें, हदीस नंबर 10 क्वेश्चन है, मौजू हदीस वो है जिस पर अमल नहीं किया जाएगा। नंबर 2, जिसको सिर्फ तरगीब दिलाने के लिए बयान किया जा सकता है। नंबर 3, ना उस पर अमल किया जाएगा ना उसे बयान किया जाएगा। अच्छा अब आप इसमें देखें, मौजू हदीस होती कौन सी है, फैब्रिकेटेड होती है, ठीक है, बिल्कुल जो किसी ने झूठ घड़ लिया, ठीक है। अब आप इस ये बताइए कि जब किसी ने झूठ घड़ा हुआ है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं है, तो क्या हम उसमें अमल करेंगे, उसको बयान करना शुरू कर देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया? ये तो बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है ना कि ना उसको बयान किया जाए ना उस पर अमल किया जाए। हाँ ज़ईफ हदीस का ज़ौफ देख के, अगर ज़ौफ शदीद नहीं है तो उसको बयान किया जा सकता है। ये हम देखेंगे कि ज़ौफ क्या है, उसमें ज़ौफ एक ये भी हो सकता है कि कोई रावी मजहूल हो तो आप उसको बयान कर सकते हैं, मगर वो अकीदे से ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल बुनियादों से ही वो रिलेटेड हो कि बिल्कुल अकीदे से रिलेटेड है तो फिर तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आम किसी को तरगीब दिलाने के लिए, किसी को कोई डरावा बताने के लिए ऐसी ज़ईफ हदीस जिसका ज़ौफ बहुत शदीद ना हो उसको बयान किया जा सकता है। मगर आप यहाँ पे देख लें कि ये ज़ईफ हदीस की वो किस्म है मौजू जो कि समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ही नहीं, किसी और की बात है, उसको तो बयान भी ना करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी हदीस को ज़ईफ कहा जाता है अगर नंबर 1, किसी सनद में रावियों की आपस में मुलाकात का सबूत ना मिले, नंबर 2, किसी ताबई ने किसी सहाबी से वो सुनी हो, नंबर 3, वो गरीब हदीस की किस्म में से हो। अब जिसको गरीब हदीस का पता है वो तो, जो ले मैन है वो तो कह सकता है कि हाँ गरीब हदीस की किसी किस्म में से हो, क्योंकि उसके जहन में गरीब हदीस होगी कि ज़ईफ हदीस गरीब हदीस एक ही बात है। लेकिन अब आपने जब ये उलूमुल हदीस पढ़ा है तो अब आपको पता है कि गरीब हदीस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो ज़ईफ है या क्या है। बुखारी की पहली हदीस ही गरीब हदीस है, क्या कहेंगे, गरीब हदीस डजंट मीन कि वो ज़ईफ है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक तो बिल्कुल रूल आउट हो गई कि गरीब हदीस से कोई ताल्लुक, इसका ज़ईफ होने का कोई ताल्लुक नहीं। अब रह गई 2 चॉइसेस, आप एक एक चॉइस को एलिमिनेट कर देते ना तो आपके लिए आसानी होती है बाकी चॉइसेस को देखना। आप देखें, किसी सनद में रावियों की आपस में मुलाकात का सबूत ना मिले, अगर आपस में रावी मिले ही नहीं है तो फिर उन्होंने कैसे ली, किसी ताबई ने किसी सहाबी से वो सुनी हो तो वो भी ज़ईफ हदीस कहलाएगी, किसी ताबई ने किसी सहाबी से सुनी हो। अब इसके अंदर क्या होगा, क्या आंसर होगा इसका, इसका क्या जवाब होगा, बाकी लोग भी लिखे ना, किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा ज्यादा लोगों का जी, मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्या लिखा है। अब देखिए कई लोगों ने बिल्कुल सोचे समझे बगैर ये भी लिख दिया कि वो गरीब हदीस है, गरीब हदीस के साथ तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो कोई ताल्लुक है ही नहीं जी। देखिए किसी सनद, किसी उसमें उनकी सनद ना मिलती हो कि ये, इन्होंने कोई सबूत नहीं मिलता कि इनकी आपस में मुलाकात हुई है, यानी वो किसी जमाने का मसलन पैदा हुआ है 200 साल बाद का, और वो दूसरा जो है जिससे जिसने उसे नरेट किया है, जिसने उसे रिवायत की है, वो 500 साल पहले पैदा हुआ था, तो जाहिर है उनकी आपस में मुलाकात का कोई सबूत हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो आपस में मिले हों, ठीक है। اور دوسرا کیا ہے, کسی تابعی نے کسی صحابی سے وہ سنی ہو تو کیا وہ ضعیف اس کو بنا دے گا؟ سوچیں اس کو, اس بات کو. ہاں, اسے ملاقات کا ثبوت نہ ملاؤ. جی, کیا یہ بات, یہ ہونا کہ کسی تابعی نے کسی صحابی سے وہ بات سنی ہو, کیا کسی حدیث کو وہ ضعیف بنا دے گا؟ خود ہی سوچے نا, اس میں ضعیف ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تابعی سن سکتا ہے کسی صحابی سے کوئی حدیث؟ ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی یا نہیں؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں کسی کو؟ اچھا چلیں آگے چلیں. اچھا, ضعیف حدیث کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے تمام راویوں کے نام معلوم ہوں تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. راویوں کے حالانکہ ناموں سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نمبر ٹو, ضعف شدید نہ ہو تو ترغیب دلانے کے لیے ضعف بتا کے بیان کر سکتے ہیں. نمبر تھری, اگر اس کے تمام راوی دیانت دار ہیں تو ہی اس پر عمل کیا جائے گا. اب دیانت داری ہو بھی تو تب بھی ضعف میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا حافظہ بہت شدید کمزور ہو, اس کی دیانت داری میں تو کوئی مسئلہ نہیں, حافظہ اس کا اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اسے نہیں حدیث لی جائے گی, بار بار غلطیاں کرتا ہے تو اس سے بھی حدیث نہیں لی جا سکتی, یہ وہ بھی ضعیف ہو جائے گی. تو اس لیے یہ تو انعاف نہیں ہے کہ اگر تمام راوی دیانت دار ہیں تو پھر اس پر عمل کیا جائے, یہ تو صرف ایک کنڈیشن میٹ ہوئی ہے. تو ضعیف حدیث کا جو حکم ہے وہ نمبر ٹو سے پتہ چلتا ہے, جو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا. کوسچن نمبر 13, مندرجہ ذیل میں سے کون سی بات درست ہے؟ اب یہ والی کوسچن چونکہ آنسر لاک نہیں ہو سکا تھا اس لیے ہم نے اس کوسچن کو ہی نکال دیا, لیکن آپ لوگ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں, ایک ایک بات کو دیکھیں, وہ بات صحیح ہوگی صرف آپ نے اس کو کلک کرنا. ایک ساتھ ساری باتیں نہ دیکھنا شروع کر دیں. جس کوسچن میں بھی میں نے یہ لکھا ہوگا نا, آپ بتائیں ان میں سے کون سی بات صحیح ہے, تو آپ تینوں آپشنز نہیں پڑھیں گے, ایک آپشن پہلی پڑھیں گے, آئیدر آپ اس کو رائٹ کریں گے یا رونگ کریں گے. تو ہم صرف ایک آپشن پہلے دیکھتے ہیں, یہ ہے طریقہ اس قسم کے کوسچنز کو ڈیل کرنے کا, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا اس میں بہت کنفیوژن ان کو ملی ہے, حالانکہ اس میں کنفیوژن کی کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی. اب آپ میرے ساتھ ذرا پڑھیں پہلی بات, تمام راویوں نے صحیح حافظے سے احادیث بیان کی, کیا یہ بات ٹھیک ہے یا رونگ ہے؟ ٹرو اور فالس بتائیں, از اٹ ٹرو اور فالس, تمام راویوں نے صحیح حافظے سے احادیث بیان کی. کہ اگر ساروں نے صحیح حافظے سے بیان کی ہوتی تو پھر کوئی کی کچھ کے حافظے کمزور کیسے ہو گئے؟ اگر سب کی نے صحیح حافظے سے ہی بیان کی ہیں تو پھر باقی احادیث کو ضعیف, کچھ احادیث کو ہم نے یہ کیسے کہہ کے نکال دیا کہ ان راویوں کا حافظہ کمزور تھا؟ نہیں, ضعیف وغیرہ کو چھوڑیں, کیا تمام راویوں کے حافظے بہت اچھے تھے تو انہوں نے اس سے احادیث بیان کی؟ نہیں, سب کے نہیں تھے, کمزور حافظے والے بھی تھے, جبھی تو انہوں کی حدیث کو لے کے ضعیف کہہ دیا گیا. جی اچھا چلے, الحمدللہ ٹھیک ہے. ہم کے ساتھ ڈسکس ابھی وہ کوسچن ہے بھی, ابھی ہم نے ڈالا ہوا, لیکن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہی کر لیتی ہوں تاکہ مجھے پتا چلے گی آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. نمبر ٹو, کسی حدیث کا کوئی راوی جھوٹا نہیں ہو سکتا. از دس کریکٹ اور از اٹ ٹرو اور فالس؟ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا. نہیں, نو نہیں لکھیں, از اٹ ٹرو اور فالس یہ لکھیں, کیونکہ یس اور نو میں مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا کسی حدیث کا کوئی راوی. کیسے ٹرو ہے؟ جھوٹا ہو سکتا ہے تبھی تو ضعیف احادیث بنی. اس ضعیف احادیث کی ہم وجوہات میں کیا دیکھتے نہیں؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی راوی جھوٹا ہے, اگر کوئی راوی فاسق ہے, اگر کوئی راوی بدتی ہے, لکھا ہوا ہے نا اس میں. دیکھیں ضعیف حدیث کا نوٹس اپنے نکالیں, اس میں کیا لکھا ہوا. یہاں بھی لکھا گیا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جھوٹا ہو, حالانکہ جھوٹے ہیں بیچ میں, اسی لیے ان سے لی گئی احادیث کو ضعیف کہہ دیا گیا. ठीक है, ये बात समझ आई? यही मौजू हदीस है ना, जईफ हदीस है। जईफ हदीस की वजूहात देखें पहले। नहीं नहीं जईफ हदीस की वजूहात देखें, इसीलिए तो उसको कह दिया गया। वो अहदीस आ रही थी, जब उन्होंने उसके ऊपर तहकीक की, रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि एक इनमें से रावी जो है, आप अच्छा आप कभी तफासीर पढ़ते हैं, जैसे इब्ने कसीर वगैरह हैं और तफासीर, उनके अंदर लिखा होता है एक हदीस बयान करके फिर उसके बाद बताया गया होता है कि इसका रावी कज्जाब था। समझ आई? इसका रावी कज्जाब था, तो यानी झूठा रावी था, तो ये हदीस नहीं ली जा सकती, इसका ज़ौफ इसके अंदर है, शदीद ज़ौफ हो गया ना फिर, वरना शदीद ज़ौफ किस बात का हुआ फिर। तो अब आप नोट्स निकाल के देखिए, ज़ईफ हदीस की आप वजूहात में आपको मिली है ये झूठा होने की, तो इसका मतलब झूठा हो सकता है ना। तो यहां पे लिखा हुआ कि कभी झूठा हो ही नहीं सकता। और फिर तीसरी, कोई इंसान भी खुद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हदीस घड़ सकता है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिकॉज दैट्स वाई हमारे पास मौजू हदीस है, वरना तो मौजू हदीस का टॉपिक ही नहीं होता। लोग क्यों घड़ते थे ये भी हमने पढ़ा, क्यों घड़ते थे बताएं? कुछ वाकयात भी उस्ताद ने बयान किए थे, तो क्यों घड़ते थे लोग, क्या रीजन था? जी तरगीब दिलाने का, शाबाश। बाज दफा ऐसे ही कोई सूरतों की बना लिया कि जो है ना ये इसके ऊपर इतना कुछ मिलेगा, इतना सवाब है, इतना वो है, ताकि लोगों को शौक पैदा हो, कुरान से दूर हो रहे हैं, चलो इस तरह से तो हम कह देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, तो लोग यकीन करके तो वो पढ़ना शुरू कर देंगे। शाबाश, टू बी फेमस, फेमस होने के लिए भी लोगों ने किया, ताकि हमारी बातें देखें। अब मैं कोई बात कर रही हूं, इतनी बातें होंगी, लेकिन अल्लाह ताला माफ करे, इस चीज से महफूज रखे, लेकिन अगर कोई बंदा कहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये हदीस है, तो लोग ज्यादा इंस्पायर होंगे। फिर लोग एक तरह की अहदीस, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रमजान है, अब रमजान के बारे में एक ही तरह की अहदीस है, एक ही अहदीस है ना, चेंज थोड़ी हो जाएंगे। अब हर साल कितने हजारों लोग रमजान के ऊपर दर्स देते हैं, खास तौर पे होता है रमजान के लिए लोगों को, और ये सुन्नत भी है रमजान के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, नेकी की तरफ लाने के लिए। अब कोई कहे हर साल तो लोग सुन सुन के सभी ये सारी हदीसें आ गई हैं, अब कोई नई चीज होनी चाहिए, किस तरह से इनको किया जाए कि ये और मोटिवेट हों, और इस तरह अब कोई एक हदीस बना ले, खुद ही घड़ ले, तो ये क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया ना, तो इस तरह से लोग किया करते थे। तो इसमें डिफरेंट रीजंस होते थे कि जिसकी वजह से वो हदीस घड़ते थे, मगर ये चंद एक रीजंस जो हमने देखे हैं वो यही थे कि लोगों को अब नेक नियत ही है, लोगों को कुरान की तरफ लाना चाहते हैं या कोई नेक काम कराना चाहते हैं, लेकिन हदीस उसके लिए घड़ ली, तो हो कितना बड़ा गुनाह है ना। तो इसमें ट्रू कौन सा हुआ फिर? Sometimes they don't know, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। थर्ड वाला ट्रू हुआ ना, तो आप जब एक एक को क्रॉस आउट करते जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रू है। सबको एक साथ नहीं देखें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन इसमें इसीलिए हुई होगी कि आप लोग सब तीनों को साथ लेकर चल रहे हैं। आप एक को देखें, इज इट ट्रू और फॉल्स, उसकी साइड पे लिख लें टी या एफ के, नंबर वन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। नहीं, ये सही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके कहा जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जबकि आपको पता ही नहीं कि हदीस है कि नहीं है। ठीक है, हाँ आप वैसे कह दें कि हाँ ये एक बात अच्छी बात है, ये सुन ले, अगर आपको श्योर नहीं है पहले तहकीक करें वाकई हदीस भी है या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर हम बात करना, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जात और हस्ती बहुत बुलंद है, मेरे आपके जैसे के ऊपर मैं कहूं कि देखें फलां ने ना ये बात कही है, आपका नाम लेके मैं कह दूं लोगों को, आपको कितना गुस्सा आएगा कि मैंने जब कही नहीं तो आप मेरा नाम लेके क्यों बात कह रहे हैं। तो हदीस घड़नी बहुत सख्त गुनाह है, बिदअत ही नहीं है, इसका तो अंजाम जहन्नम कहा गया। अच्छा जी देखें, क्वेश्चन नंबर 14, अगर कोई तबा ताबई कहे कि फलां ताबई ने ये फरमाया है, तो कौन सी हदीस होगी, मखतू या मौजू या मौकूफ? इसमें तो आपको जेन लड़ाने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो रटी रटाई एक बात थी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की भी नहीं बात थी, फिर भी लोगों ने गलत किया इसको। कोई तबा ताबई कहे के फलां ताबई ने ये बात कही है तो मखदू हो गई ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मुंदरजा जेल में से कौन सी बात दुरुस्त है। अब इस तरह के क्वेश्चन आया करेंगे जब आपका ऐसा टेस्ट होगा। अब हम इसको अगेन पॉइंट वाइज देखेंगे। नंबर वन, सही हदीस वो है जो दूसरे आइम्मा कराम के नजदीक सही है चाहे वो बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर ना हो। नंबर टू, वो हदीस सही हो ही नहीं सकती जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आप देखें, अब एक आपको करेक्ट नजर आ रहा है इसके अंदर से तो आप उसको करेक्ट लिख लें। नंबर वन आपको लग रहा है ना तो उसको करेक्ट लिख लें, पढ़े जरूर दूसरे लेकिन ये देख लें कि आपको वो लगा था। अब आपको कंफ्यूजन तब हो सकती है अगर नंबर टू और नंबर थ्री भी आपको सही लग रहे हैं, क्योंकि बाज लोगों का वाकई ये ख्याल है कि सही हदीस सिर्फ वो है जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, और जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद नहीं है वो सही हदीस हो ही नहीं सकती। वो अब आप कहीं से भी लाके दे दें, अब तबरानी से कोई हदीस बता दें, अब तबरानी सहा सित्ता में भी नहीं है लेकिन उसमें भी कोई सही हदीस हो सकती है। यानी आप कहें नहीं नहीं जी बुखारी और मुस्लिम में नहीं है तो मैं मानती नहीं। अब बुखारी और मुस्लिम में तो कई हदीस को मेंशन नहीं किया अपनी किताबों में। और तीसरा पॉइंट है, हर हदीस जो सहा सित्ता में है वो सही ही है, क्या ये बात ठीक है? हर हदीस जो सहा सित्ता में है वो सही ही है, नहीं उनमें दूसरे उलमा के नजदीक कुछ हदीस ऐसी भी हैं जो सही नहीं है। ठीक है जी, कुछ ज़ईफ भी है शाबाश। अच्छा जी, तो कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, आंसर सही हुआ नंबर वन। नंबर 16, सही हदीस की किताबों की तादाद 6 है, 6 से जायद है या 5 है। अब जो सही हदीस की किताबों की तादाद, यहाँ पे वो किताबें पूछी गई हैं आपसे जिनको सहा कहा जाता है, जिनमें सब उन्होंने जिन्होंने लिखी हैं उन्होंने यही कह के लिखी हैं कि हमने ये अहादीस इन किताबों में सिर्फ सही अहादीस जमा की है। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए। हदीस का मतन कहलाता है, क्या कहलाता है? रावियों के नामों का सिलसिला, मतन। नंबर टू, हदीस का टेक्स्ट जो रावियों के नामों के बाद आता है, या नंबर थ्री, हदीस के आखिर में ब्रैकेट में किताब का नाम जो लिखा होता है वो है हदीस का मतन। अगर हदीस का मतन ही नहीं ना देखें किसी को पता तो फिर पता नहीं आज तक हम क्या पढ़ रहे थे। मतन तो जानना जरूरी, तो पहले दिन की बात है कि मतन क्या होता है। अच्छा, नंबर 18, मुत्तफकुन अलैह हदीस वो है जिस पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक हो। नंबर टू, जो इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने एक ही सहाबी से रिवायत किया। नंबर थ्री, जो तमाम सहा सित्ता में दर्ज हो, जो तमाम सहा सित्ता में दर्ज हो। जी जो तमाम उम्मत, जो इमाम बुखारी दोनों ने एक ही सहाबी से रिवायत किया हो उसको कहते हैं मुत्तफकुन अलैह, दोनों मुत्तफिक हुए ना उसके ऊपर। जब हम लूलू वल मरजान पढ़ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि लूलू वल मरजान में मुत्तफकुन अलैह अहादीस है, इसमें तमाम उम्मत का इत्तेफाक होने का तो बात नहीं है। जाहिर है वो तो हो ही गई जो बुखारी और मुस्लिम ने जिसको किया, लेकिन एक ही सहाबी से रिवायत किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, सहा वो हदीस की किताबें कहलाती हैं, ये तो अभी हमने बात कर ली ना, जो हदीस की मशहूर किताबें हैं या जिनके मुहदिसी ने अपने एतबार से तमाम सही हदीस लिखी। यानी वो ये नहीं कहते कि हमने कोई ज़ईफ हदीस लिखी, उन्होंने यही कहा है कि हमने सारी सही अहादीस ही लिखी हैं अपनी किताबों में। और ये तो है ही नहीं ना जिनके लिखने वालों ने सिर्फ अहकाम लिखे हो और फिकही अबाब पे नहीं कोई बात की हो। ज़ईफ हदीस का ही दूसरा नाम क्या है? गरीब हदीस है। मरदूद हदीस है या मौकूफ हदीस है? मरदूद, ठीक है, शाबाश। अजीज हदीस वो है जिसके रावी सनद के तमाम तबकों में दो से ज्यादा ना हो, जिसके रावी सनद के तमाम तबकों में दो से कम ना हो। اب جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ صحیح ہے اس کو فوراً مارک کر دے گا, باقی کو بے شک آپ پڑھ لیں لیکن مارک اس کو فوراً کریں. اور یہ بھی ایک رٹی رٹائی بات تھی, اس میں کوئی ایسی سمجھنے کی بات نہیں تھی کہ وہ ٹیکنیکل بات ہو, رٹی رٹائی بات ہے یہ تو بالکل. اس میں بھی غلطی ہونے کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا, انلیس ہماری اپنی نیگلیجنس ہو کہ دو کا ورڈ لکھا ہوا تو دو سے زیادہ دو سے کم اس کے اندر ہمارا ذہن کہیں کنفیوز ہو گیا. کیا تو نمبر ٹو پھر ہوا, کوشچن نمبر 22, قرآن ہم تک کس انداز میں پہنچا ہے, کس انداز میں پہنچا ہے, متواتر کے احاد کے, کیا دیکھیں متواتر تھا نا اسی وجہ سے تو اتنے لوگوں نے تواتر کے ساتھ اس کو روایت کیا. کیا احاد تو ہے ہی نہیں, احاد تو ورنہ ضعیف بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے, بخاری میں کوشچن نمبر 23, بخاری میں تمام احادیث متواتر ہیں, متواتر بھی احاد بھی ہیں اور تمام احادیث مشہور ہیں, بتائیں کیا ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ بخاری میں پہلی حدیث کیا ہے, پہلی حدیث کیا ہے, غریب ہے. غریب کس کی قسم ہے, کس کی قسم ہے, احاد کی. تو اس کا مطلب احاد بھی ہے. تو پھر ہم جی ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک سکہ راوی, کوشچن نمبر 24, ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی سے الٹ بات کر رہا ہو تو نمبر ون شاذ کہلاتی ہے, ضعیف کہلاتی ہے, صحیح لذاتی ہی کہلاتی ہے. صحیح لذاتی ذرا ہو ہی نہیں سکتا, تو بالکل ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے, اور پھر ضعیف بھی نہیں ہے, وہ بھی ایک بات نہیں ہے, شاذ کہلاتی ہے. یہ کیونکہ کئی دفعہ میں نے یہ بات بتائی. الاثر یہ کیا ہے, آپ دیکھیں گے جب آپ تفاسیر پڑھتے ہیں نا تو اس میں بعض جگہ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں صحابی کا اثر ہے. تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے اثر کیا چیز ہے, اثر کیا ہوتا ہے. کسی بھی جاری سنت کو اثر کہتے ہیں, سنت کو اثر کہتے ہیں, یا صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اثر کہا جاتا ہے, یا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کر رہے ہیں اس کو اثر کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بات کریں, یہ اقوال صحابہ اور تابعین, بالکل حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے ہی نہیں ہے, تو اس میں بھی کوئی کنفیوژن ایسی نہیں ہونی چاہیے. اب امام بخاری کا جو اصل نام ہے, یہ تو بالکل بچوں والا کوشچن تھا, اس لیے کیونکہ یہ تو آپ کو سمجھ میں مفت میں نمبر مل گئے, کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ان میں سے کسی کا نام بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, متواتر حدیث کی ایک شرط یہ ہے کہ جو مسلسل چلی آ رہی ہو ہر زمانے میں. نمبر ٹو, راوی یہ کہے کہ میں نے خود دیکھا یا میں نے خود سنا. نمبر تھری, جس کے راوی خواہ تعداد میں کتنے یہ بھی ہوں مگر سب سچے ہوں, بتائیں کون سی ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہو ہر زمانے میں. ایسی تو ہم نے کوئی بات ایسی دیکھی ہی نہیں. راوی یہ کہے کہ میں نے خود دیکھا, میں نے خود سنا, اسی وجہ سے تو وہ بیسٹ ہے. متواتر جو ہے نا ٹاپ ٹاپ والی ہے, کیونکہ اس میں اتنی سخت شرط ہے. اب مسلسل چلی آ رہی ہو ہر زمانے میں, اس طرح تو کوئی ضعیف حدیث بھی چلی آ رہی ہوتی ہے زبان در زبان در زبان, آگے سے آگے لوگ بتاتے رہتے ہیں. تو اب ہر زمانے میں وہ مشہور ہو, بچے بچے کی زبان پہ ہو, تو وہ متواتر ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. راوی یہ کہے, مثلا آج کے زمانے میں اگر کوئی حدیث بہت مشہور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو خواہ چین تمہیں جانا پڑے, اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا وہ متواتر ہے. جی, سما اور دیکھنے سے تعلق ہے بالکل, یعنی آپ کے یعنی ملاقات کی ہو یا خود دیکھا ہو یا خود سنا ہو. ٹھیک ہے اچھا جی, اگلا کوشچن 28, احاد اور متواتر سند کے لحاظ سے حدیث کی قسم ہے یا متن کے لحاظ سے حدیث کی قسم ہے یا دونوں کے لحاظ سے ہیں. تو شروع کی باتیں ہیں نا, متن کی تو ابھی ہم نے بات ہی نہیں کی ہے, متن کی تو بات ہی نہیں ہوئی, کانٹینٹ آف حدیث کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی, اس وقت سے ہم بات ہی کس پہ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, آج تک ہم نے بات کس پہ کی, راویوں کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, کبھی مشہور غریب عزیز, کبھی اس کے اوپر, جی چین پہ بات ہو رہی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے آپ کو, چینز پہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ فلاں راوی کا حافظہ کمزور یا اتنے راوی ہونے چاہیے, یا یہ ایک راوی سکہ راوی اس کو اس کی مخالفت کر رہا ہو, یا اس طرح کی یہی باتیں ہم آج تک پڑھ رہے ہیں نا. تو وہ کیا ہے, یہ راویوں کو کیا کہتے ہیں, हदीस के कंपोनेंट्स है ना, एक है मतन और एक है सनद। सनद क्या चीज है? मतन तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, सनद क्या चीज है? चेन, ठीक है, चेन को सनद। चेन किसकी चेन है? चेन में क्या होता है? रावी तो है, तो आज तक तो हम रावियों का ही तो पढ़ रहे हैं, रावियों की ही तो बात अभी तक, ये जितना उलूमुल हदीस में हमने पढ़ा अभी तक तो हम इसी पे तो बात कर रहे हैं, चेन पे, सनद पे। ये जितनी मकबूल है, ये मुतवातिर है, ये सब चेन के ऊपर बात हो रही है, मतन पे तो हम आए ही नहीं। समझ आ गई बात जी? तो अभी तक हमारी सारी जो ये है ना, ये सारा उसकी गिर्दी घूमता है। नहीं, अभी हमने मतन को तो हमने, अब मतन तो अभी ये हमारे शुरू है ना, जब हमने लुलू वल मरजान शुरू की कि हमने अहदीस पढ़नी शुरू की तो मतन उसके अंदर है, हमने तो मतन को अंडर डिस्कशन लाए ही नहीं। अभी हम तो सिर्फ रावियों को ही देख रहे हैं ना, रावी दयानतदार है ये नहीं, फला रावी झूठा था इसलिए ये जईफ है, फला रावी ने ऐसे किया था, फला रावी बिदती, फला रावी, ये सब चीजें हम उसको देख रहे हैं, सनद को, ठीक है, सारी हमारी तहकीक रावियों पे, क्योंकि रावी ये ऑथेंटिक होगा तो पैगाम का हमें पता चलेगा वो सही है या नहीं। ठीक है, अगर रावी में कहीं झोल आ गया ना, रावी में कहीं हमने वीकनेस देख ली, तो पैगाम में शक पड़ जाएगा, कौन यकीन करेगा? रावी अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके टेक्स्ट पे कौन यकीन करेगा? तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल हो जाएगा जिस वक्त ये सनद जो है ये स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? चलिए जी आगे चलते हैं। मुस्नद 29, हदीस में इल्लत से मुराद है, नंबर वन, हदीस का रावी सिका हो। अब किसी को सिका का अगर मतलब नहीं पता ना, तो फिर जाहिर है ये तो नहीं समझ आएगा। हदीस का रावी अगर सिका हो, सिका का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ऑथेंटिक, ठीक है। हदीस का रावी अगर सिका है तो वो हदीस में इल्लत है क्या? इल्लत क्या चीज होती है? कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हदीस का रावी सिका हो, हदीस का रावी सिका होने से वो इल्लत हो जाएगी। अगर किसी को इल्लत का भी वर्ड पता है और फिर उसको सिका का भी पता है, तो फिर तो वो नंबर वन को तो नहीं चूज करेगा। नंबर टू, जब इसके रावी बहुत कम हो तादाद में। नंबर थ्री, इसमें कोई भी ऐसी बात आ जाए जिससे समझ आ कि ये हदीस कुछ सही नहीं है, उसको इल्लत कहते हैं। वो कोई भी बात हो सकती, कोई भी चीज ऐसी हो सकती जिससे लगे कि ये हदीस सही नहीं है, यानी उसमें वीकनेस आ गई। ठीक है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुई? कुछ मुझे बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे चले। मुस्नद हदीस की उस किताब को कहते हैं, नंबर वन, जिसमें किसी एक मसले पर अहदीस जमा की गई हो, नंबर टू, जिसमें सिर्फ अहकाम हो, नंबर थ्री, जिसमें अहदीस सहाबा कराम के नामों की तरतीब से, उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर की उससे जमा की गई। तो ये अगर किसी ने, इसमें भी कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये रटी रटाई बात है ना, ये तो जिसने याद किया होगा ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये ठीक हो गया होगा। गलती आप लोगों ने वहां पे किए जहां पे थोड़ा सा जहन लगाने की जरूरत थी, थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी कि ये क्या है। बाकी ये जैसे नाम है इमाम बुखारी का या ये तो ऐसी चीजें हैं जो बगैर सोचे समझे आपने जो याद किया हुआ बस वो, या मखदू ये मौकूफ, ये अहदीस मरफू अहदीस, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल रटे वाली हैं। हाँ, रटी रटाई हैं बिल्कुल। तो हाँ जी, इंशाल्लाह ताला आप लोग राजी हों तो टेस्ट तो हमें लेने में कोई मुश्किल नहीं है। अब ये है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों का, अब तो किताब तहारा का इंशाल्लाह ताला टेस्ट आएगा, तो समटाइम वी नो द आंसर बट सम हाउ मेड मिस्टेक, सोचते नहीं है आप, मुझे लगता है ज्यादा जल्दी करते हैं उसको चूज करने में। हाँ जरूर, आप शौक से करते रहिए, आप इसको बार बार और सोचें ना, खास तौर पे जहां पे आपने गलती की है ना उसको प्लीज जरूर देखें, यहां पे मुझे किस चीज में कंफ्यूजन आई, ठीक है, ताकि आपको दोबारा आप ये गलती दोहराए नहीं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिसमें आपने गलती की है वो चीज आपको कभी नहीं भूलेगी, इंशाल्लाह वो आपको याद रहेगी। तो इसका बहुत फायदा है, इसको अपने लिए बुरा ना जाने। आसान तक रहो शही अन वह हुआ खैर लकुम, हो सकता है तुम किसी चीज को बुरा समझते हो लेकिन उसी में तुम्हारे लिए खैर, तो इसमें आपके लिए खैर ही खैर। अब आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये जो ये सबक है, जिसमें शायद जो करेक्ट आंसर्स हैं वो भूल भी जाएं मगर जो रॉन्ग है वो नहीं भूलेंगे। तो जिसके जितने ज्यादा रॉन्ग है उसको बहुत ज्यादा ही फायदा है, सही है ना। तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी खैर है, कोई इसमें डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं किसी को भी। जिन्होंने पूरी मेहनत करके अच्छा किया उनके लिए भी खैर है, और जिनका नहीं सही हो सका उनके लिए भी खैर है। जी इंशाल्लाह ताला आप अपने नाम यहाँ पे लिखने, ताकि आपके नाम इंशाल्लाह ताला सेव कर लिए जाएंगे। अच्छा जी, अब इंशाल्लाह हम क्लास अपनी शुरू करते हैं, आगे की अहादीस हम लोग देखते हैं, और किताबो तहारा के आप टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए इंशाल्लाह। कब लिया जाए आपका टेस्ट बताएं, आप लोग जब कहेंगे तब ले लिया जाएगा। चले मैं देख के ना कोई डेट तो आपके लिए टेस्ट को मैं इंशाल्लाह फिर अनाउंस कर देती हूँ कि दिसंबर में किसी वक्त आपका टेस्ट लिया जाए, ठीक है ना? क्या ख्याल है? दिसंबर 8, दिसंबर 8 तो अगले हफ्ते ही है, बिफोर कुरान टेस्ट। अच्छा चलें देखते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दें, नेक्स्ट वीक में फिर मैं आपको अनाउंस करूंगी कि कब आपका टेस्ट है। नहीं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला मैं, अच्छा दिसंबर 1 भी तो है जी, दिसंबर 8 इज आफ्टर दैट, सही कह रही। तो अभी शायद लोग उसके लिए तैयार नहीं है, तो नेक्स्ट वीक में हाँ आप लोग भी सोच लें। आप लोग एक दफा गौर, कितना टाइम लगेगा इसको करने में, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी डेली लाइफ से, ठीक है? चलें सही है इंशाल्लाह ताला। क्लास हम प्ले करते हैं, आज हमारे पास रिकॉर्डिंग है आज की क्लास की, तो वो हम सुनते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कतीरा, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका 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 वनतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।